تفسير. अब आप देखिए कि आयत नंबर 36 से 43 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान की हकीकी सिफात का बयान किया है कि वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और जो आखिरत पर यकीन रखते हैं तो उनके अंदर किस किस्म की सिफात पाई जाती हैं। फरमाया, फमा ऊती तुम मिन शई इन फमताउल हयात दुनिया, जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो महज दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी का सरो सामान है। वमा इंदल्लाही खैर, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो ज़्यादा बेहतर है। व अबका, और बाकी रहने वाला और पायदार भी। सूरत अशूरा की आयत नंबर 36 में हमने जो इसका अभी आधा जो हिस्सा पढ़ा है इसमें तीन हकीकतें बताई गई हैं। पहली बात कि दुनिया की चंद रोज़ा जो ज़िंदगी है इसका जो सरो सामान है ये नापायदार है। दूसरी बात, जो अल्लाह के पास है वो बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाला है। और तीसरी बात कि फिर दुनिया की हकीर जो ज़िंदगी और हकीर जो नेमते हैं इसकी बजाय जो अल्लाह के पास रहने वाला है उसको तरजीह देनी चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए। आप देखें कि मोमिनाना सिफात से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की हकीकत बताई है और जो आखिरत है इसकी कदरों कीमत मेरी और आपकी नज़रों के सामने रखी है। और दुनिया हकीर है, दुनिया नापायदार है, तो इस सिलसिले में हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रहनुमाई मिलती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हों का कंधा पकड़कर फरमाया कि दुनिया में इस तरह रह गोया तू परदेसी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हों कहा करते थे, जब शाम हो तो सुबह का इंतज़ार ना कर और जब सुबह हो तो शाम का मुंतज़िर ना रह। और अपनी सेहत के ज़माने में अपनी बीमारी के ज़माने के लिए तोशा ले ले और अपनी ज़िंदगी के दौरान अपनी मौत की तैयारी कर ले। इसे भी बुखारी ने रवायत किया है। अब आप देखें कि मुसाफिर जो है वो दुनिया में कैसे जा रहता है। आप भी ट्रैवलिंग करती हैं, पैसेंजर बनती हैं, आप क्या करती हैं? कम से कम सामान, और फिर ये कि रास्ते में आपका दिल नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि वहीं जो है वो आराम से लंबी तान कर आप लेट जाएं, बल्कि आप चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूँ और मंजिल पर पहुँच कर आपको जो है वो इत्मीनान होता है। तो प्यारी बहनों, ये दुनिया की ज़िंदगी जो बहुत ही हकीर है, जो नापायदार है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे यही बात कही। लेकिन याद रखिएगा कि हम में से जो शख्स भी दुनिया पे आया उसकी ज़िंदगी की तीन स्टेजेस हैं। उसकी ज़िंदगी जो है, जो भी दुनिया में मौजूद है, जैसे मैं और आप, हम सब जो ज़िंदा हैं, तो दुनिया की ज़िंदगी हमारे तीन स्टेप में बट जाती है। नंबर एक, पहला दौर है पैदाइश से लेकर मौत तक, क्योंकि मौत के बाद जिस्म मिट्टी में दफन कर दिया जाता है मगर रूह अपनी ज़िंदगी की दूसरी स्टेज में दाखिल हो जाती है, दूसरे स्टेप में। और ये दौर है जो जिस्मानी मौत के वक्त से लेकर कयामत के बरपा होने तक चलेगा, जिसे कब्र की ज़िंदगी कहा जाता है। तो हमारी पहली स्टेज है वो है दुनिया की ज़िंदगी में हमारा जिंदा रहना, दूसरी स्टेज जो है वो कब्र की ज़िंदगी है, और तीसरी स्टेज जो है वो कयामत के साथ ही शुरू हो जाएगी और जो कभी ख़त्म ना होगी। ना फिर कोई मौत है, ना कोई बरज़ख है, और ना ही फिर कोई और कयामत है। तो ये जो आखिरी स्टेज है ये पहली दोनों स्टेजों से लंबी है, अहम है। जो दुनिया की स्टेज है जिसमें आज मैं और आप हैं, ये सबसे छोटी स्टेज है, छोटा स्टेप है, नापायदार स्टेप है। और आप गौर करें कि आप सबसे ज़्यादा अहमियत इसको देती हैं। और हमारी ज़िंदगी का वो दौर जो कभी ना ख़त्म होने वाला हिस्सा है, जो क़यामत के बाद शुरू होगा, वो आपको कितना याद आता है, और जिसके जो नतायज हैं वो दूरस हैं। तो आइए दुनिया की इस ज़िंदगी पर, जो इंतहाई मुख्तसर ज़िंदगी है और नापायदार है, और जिस पर क़यामत के बाद की ज़िंदगी जो हमेशा हमेशा रहने वाली है वो डिपेंड करती है, आइए दुनिया की ज़िंदगी को परहेज़गारी से गुजारें। आइए कुफर और नाफरमानी जो है उस रवैये को ख़त्म करें। आइए अपनी मनमानी को ख़त्म करें और आखिरत की तैयारी करें। फ़मा ऊती तुम मिन शैइन फ़मता उल हयात दुनिया, जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो महज दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी का सरो सामान है। तो पहला सबक जो हमें यहाँ पे दिलाया जा रहा है वो ये कि लोगों, दुनिया हकीर है, नापायदार है और मुख्तसर है। वमा इंदल्लाही खैरुन व अबका खैरुन, और अबका जो हैं ये दोनों इसम तफसील हैं। वैसे आपको अफ़लु के वज़न पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बाज़ इसम तफसील ऐसे होते हैं जो अफ़लु के वज़न पर नहीं आते, लेकिन मानी जो हैं वो ही देते हैं। तो यहाँ पर भी ये बात बताई जा रही है कि जो नतीजा और जो रिज़ल्ट अल्लाह के यहाँ निकलने वाला है, जो कुछ अल्लाह के यहाँ मिलने वाला है वो ज़्यादा बेहतरीन है और पायदार भी। तो फिर क्या करना चाहिए? फिर हमें वो जो बाद की ज़िंदगी है, जो अल्लाह के पास हमें जाकर मिलने वाली है, फिर हमें उसकी जो है तैयारी करनी चाहिए। हज़रत इब्राहिम बिन यजीद तमीमी एक मुमताज़ ताबई थे। ताबई किसे कहते हैं? जो के सहाबी तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने सहाबा की सोहबत पाई, उन्होंने सहाबा को देखा, सहाबा से मिले। ये एक मुमताज़ ताबई थे। एक दफ़ा अपने दौलतमंद बाप को इस बात पर टोका कि आप मामूली कपड़ा क्यों पहनते हैं। बाप ने जवाब दिया, बेटा जब से बसरे में आया हूँ मैंने हज़ारों पैदा किए मगर मेरी खुशी में कोई इजाफा ना हुआ, इसलिए लिबास मेरे लिए मुसर्रत का कोई सामान नहीं है। मैं तो आखिरत के हिसाब किताब से डरता हूँ क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना है कि क़यामत के दिन एक दिरहम रखने वाले से ज़्यादा दो दिरहम रखने वाले से हिसाब होगा। तो प्यारी बहनों, दुनिया में अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दे रखा है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका हिसाब लेंगे। तो हमें उसके लिए चुकन्ना रहना चाहिए और उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो आखिरत में जो बेहतर और पायदार ज़िंदगी हम चाहते हैं, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? फिर उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए? हम क्या करें कि हम जो हैं वो अल्लाह को राज़ी कर लें? हम क्या करें कि हमारे अंदर आखिरत का शौक पैदा हो? हम क्या करें कि हमें इस बात पर यकीन आ जाए कि जो आखिरत है हमें उसके लिए जीना है? और ये जो बेहतरीन सिफ़ात हैं, जो मोमिनाना सिफ़ात हैं, जो आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान के नतीजे में पैदा होती हैं, तो वो सिफ़ात हमारे अंदर जो है वो पैदा हो जाए। ये जो अल्लाह के पास बेहतर जगह मिलेगी और पायदार उनको इनाम मिलेगा, तो वो कौन लोग हैं? इसको आप सर्कल कर लें, लिल्लज़ीना आमनु, वो उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए। तो अब यहाँ पे देखें कि पहली शर्त जो होनी चाहिए वो ये कि ईमान लाने वाले, अल्लाह पर ईमान लाने वाले, आखिरत पर ईमान लाने वाले, ये है पहली शर्त जिसका सबसे पहले ज़िक्र किया गया है कि वो ईमान लाने वाले हैं। इसके मानी हैं कि वो अपने रब पर भरोसा करते हैं, वो दुनिया की मताए हकीर के पीछे अपनी आकबत बर्बाद नहीं करते, वो अल्लाह की बातों पर यकीन रखते हैं, वो अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रखते हैं, उन्हें यकीन है कि कि अल्लाह ने फरमाया है कि आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है, तो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप देखें कि पहली कंडीशन जो बताई गई, अब उसके बाद आप देखेंगी मोमिनाना सिफात का जिक्र है कि ईमान के साथ फिर कौन सी मोमिनाना सिफात पैदा होती हैं। ईमान जो है ये बिल्कुल बुनियादी सिफत है, बुनियादी कंडीशन है, क्योंकि ईमान के बग़ैर बेशक सारी सिफात हों लेकिन फिर उसका जो है कुछ भी फ़ायदा नहीं है, उसका कुछ भी अजर नहीं है। तो पहली चीज़ ईमान है। अब ईमान के बाद हम सिफात को देखेंगे। पहली सिफत है वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो लोग जो कि अपने रब पर भरोसा रखते हैं। अब आप देखें कि अल्लाह पर भरोसा रखने के एक मानी है कि अल्लाह ताला की रहनुमाई पर कामिल एतमाद, कि अल्लाह ताला ने हलाल और हराम का जो कानून बताया है, जो ज़िंदगी गुजारने का दीन बताया है, यकीन हो कि इसी में मेरे लिए खैर है। नंबर दो, अपनी ताकत, काबिलियत और ज़राए वसाइल पर भरोसा ना हो, बल्कि असल भरोसा जो है वो अल्लाह पर हो, अल्लाह की मदद पर हो और अल्लाह की तौफीक पर इन्हिसार हो। नंबर तीन, और इस अल्लाह के जो वादे हैं उनको सच्चा समझा जाए कि ईमान और अमले सवाले के नतीजे में अल्लाह ताला ने जो इनामात देने का वादा किया है, तो यकीन करें कि हाँ वो मिलकर रहेंगे। इस सिलसिले में जो है वो तवक्कुल की वो तारीफ भी आपको याद होगी। तवक्कुल के ये मानी हैं कि खंजर तेज़ रख अपना, फिर अंजाम इसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले कर। तवक्कुल की तारीफ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई, पहले अपने ऊंट का घुटना बांध फिर तवक्कुल कर। रावी हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो, रवायत है तिब्रानी की। तो हत्तुल इम्कान आप जो कोशिश कर सकती हैं, जो ज़ाहरी असबाब मुहैया कर सकती हैं भरपूर, वो करके फिर अंजाम जो है वो अल्लाह के सपोर्ट कर दें। वह आला रब्बिहिम यतवक्कलून, के ये लोग जो हैं वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। तो क्या करना है, अपना जायज़ा लेना है, अपना मुहासबा करना है कि क्या आप जो हैं अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल करती हैं हर काम में, हर मामले में। बात बच्चों के रिश्ते की हो, बात बच्चों की पढ़ाई की हो, या बच्चों की तालीम व तरबियत की हो, अपना घर बनाने की हो, या जॉब के इंटरव्यू की हो, या किसी से कोई भी मामला करने की हो, तो जो आप कर सकते हैं करने के बाद फिर अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। क्योंकि सारी कोशिशों के बाद भी अगर आपको वो मुतवक्को नतायज नहीं मिल रहे और जो आप चाहती हैं वो नतायज नहीं मिल रहे, तो यकीनन इसमें भी फिर अल्लाह ही की तरफ से कोई खैर होगी, और इसमें ही जो है वो अल्लाह ताला इसमें यकीनन हमारे लिए कोई खैर पैदा करेंगे। तो ये है पहली सिफत, माली दा कम पानी देवना ते पर पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फूल लौना लावे ये ना लावे। दूसरी सिफत है वल्लज़ीना यजतरिबूना कबायर अल इस्मी वल फवाहिशा, जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं। अब आप देखें कि दूसरी सिफत में अल्लाह ताला ने कबीरा गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करने का जिक्र किया है, यह आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। अब आप देखिए कि कबीरा गुनाहों से खुसूसन बेहयाई के कामों से परहेज करने वाले हैं। कबीरा गुनाह आपने सूरत निसा में भी पढ़े, और इससे पहले भी जो है वो कई कबीरा गुनाहों की फहरिस्त में आपको बता चुकी हूँ, और जिसमें जो है वो शिर्क भी है, जादू करना है, जिना करना है, और भोली भाली औरतों पर इल्ज़ाम लगाना है, यतीम का माल खाना है ना। तो बहुत से कबीरा गुनाह आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने तमाम बुराइयों को तीन अनवानों के अंदर समेट दिया है। पहला अनवान है इस्म का, और वो तमाम बुराइयाँ हैं जो हक तलफी, नाइंसाफ़ी और जुल्म की नोयत की होती हैं। अल्लाह ताला ने जो है वो कबीरा गुनाहों को अलग किया है। दूसरा जो है, दूसरी फहरिस्त है फवाहिश की। फवाहिश से मुराद वो बुराइयां हैं जो शहवत और ख्वाहिशात नफ्स की राह से उभरती हैं। فواہش، فواہش کا گناہ عام کبیرہ گناہوں سے یہ زیادہ سخت ہیں اور یہ متعدی امراض ہیں، دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ان میں بے حیائی پائی جاتی ہے، جیسے زنا اور زنا سے پہلے کے جو ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ اعمال ڈھٹائی سے کیے جاتے ہیں اور ایسے اعمال پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فواہش کا ذکر کیا، اور تیسرا عنوان جو ہے وہ ہے غضب کا، غضب، غضب غصے کو کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ غضب کیا ہے، دراصل یہ انانیت ہے، خود سری ہے، استکبار ہے۔ جب کوئی شخص جو ہے اس کے اندر انانیت آتی ہے، جب اس کے اندر جو ہے کبر پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کا اظہار جو ہے وہ غصے کی شکل میں سامنے آتا ہے کہ انسان جو ہے کیا کرتا ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اگر غصہ آ جائے تو وہ درگزر کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ آتا نہیں ہے، ہے نا، یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے جو مومنین ہیں، جو اہل جنت ہیں، ان کی یہ صفت بتائی ہے کہ جب انہیں کبھی غصہ آ جاتا ہے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور اگر وہ غصے میں آ جائیں، ہم یغفرون، تو وہ درگزر کر جاتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ ان کا جو مزاج ہے وہ انتقام والا نہیں ہوتا، وہ غصیلے اور جھلے نہیں ہوتے، وہ سخت مزاج نہیں ہوتے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے کہ کبھی اس کو ان کو غصہ آ جاتا ہے، اور جو ہی ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر اور چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، فوراً کوشش کرتے ہیں کہ ان کا غصہ جو ہے وہ اس کو پی جائیں۔ اور غصے کو پی جانا یہ بہترین انسانی صفات ہیں، قرآن اس کی بہت تعریف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، البتہ جب اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کی ہتک کی جاتی تو آپ سزا دیتے تھے۔ اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھیے کہ غصہ جو ہے جب انسان کو آتا ہے تو وہ عموماً ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے جس میں بعد میں اس کو بڑی سخت ندامت ہوتی ہے۔ غصے میں تھے آپ، غصے میں گھر سے نکلیں، آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور آپ کو احساس ہی نہیں ہوا، اور آپ نے پاؤں بریک کی بجائے جو ہے وہ سپیڈ پہ رکھا اور گاڑی جو تھی وہ ہٹ کر دی۔ غصے کی حالت میں شوہر نے طلاق دے دی، غصے کی حالت میں عورت جو تھی اس نے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کر لیا، تانے دے دیے، ہے نا۔ تو غصہ جو ہے، غصے کا آنا بری چیز نہیں ہے، انسان ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن غصے کو کنٹرول نہ کرنا بری چیز ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ غصہ نہیں آتا ان کو، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جب غصہ ان کو آ جاتا ہے تو وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا۔ اور دوسری بات، اگر اللہ کے دین کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس وقت غصہ آنا چاہیے جب اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آیا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا جیسے کسی نے چہرے پر انار نچوڑ دیا ہو۔ مثلاً جب فاطمہ مخزومی قریشی کی چوری کا مقدمہ پیش ہوا تو قریشیوں نے حضرت اسامہ بن زید کو سفارش کے لیے بھیجا رضی اللہ عنہ۔ حضرت اسامہ نے سفارش کی تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، اسامہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورۃ بقرہ شروع کر دی، ایک دیہاتی نے نماز توڑ کر اپنی الگ نماز پڑھ لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ حضرت معاذ پر سخت ناراض ہوئے اور تین دفعہ کہا، افتان انت یا معاذ، معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ तो प्यारी बहनों, आइए गुस्से को कंट्रोल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं है जो किसी को कुश्ती में बिछाड़ दे, यानी किसी को कुश्ती में शिकस्त दे दे, बल्कि वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप को जब्त में रखे। इसे बुखारी ने रवायत किया है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने रसूलुल्लाह से पूछा कि मुझे कुछ नसीहत करें। आपने फरमाया, गुस्सा मत किया कर। इसने दोबारा और तीसरी दफ़ा यही बात पूछी। आप हर बार उसे यही कहते रहे कि गुस्सा मत किया कर। इसे बुखारी ने रवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नब्ज़ शनास थे, और आप जानते थे कि इस शख्स के अंदर गुस्सा ज़्यादा पाया जाता है और उससे मामलात बहुत ख़राब होते हैं, तो आपने बार बार उसे गुस्से की नसीहत की। तो आप देखिए कि यहाँ पर तीन बातें हमारे सामने आईं, और उनमें से जो है वो जो बुराई के ज़िमन में हमारे सामने आईं, तो उनमें से एक कबीरा गुनाहों से बचना, नंबर दो बेहयाई के कामों से परहेज़ करना, और नंबर तीन जब गुस्सा आ जाए तो दरगुजर करना, माफ़ कर देना। अब आप देखें कि एक तो ये है ना कि गुस्से को कंट्रोल करना, और दूसरी यहाँ बात जो हमें पता चल रही है कि फिर दरगुजर कर देना। तो फाफू वसफाहू का सबक जो है ना, उसको नहीं भूलना। बहुत से लोग हैं, मसलन आप अपनी कंपनी की मैनेजर हैं और आप बहुत से लोग आपके अंडर हैं, और जब वो लोग काम करते हैं, कोई वक्त पर नहीं आता, कोई रिपोर्ट वक्त पर नहीं देता, कोई एक्टिव होके सही काम नहीं करता, आप बार बार उन्हें याद दहानी करवाती हैं, आप उन्हें जो है वो तनख्वाह देती हैं, आप सहूलतें और बेनिफिट सब कुछ, और उसके बाद क्या होता है कि फिर गुस्सा आने लगता है। तो क्या करना है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो दरगुजर करने वाले हैं, यानी समझाना है लेकिन उसके साथ साथ जो है वो गलतियों पर दरगुजर करना है। घर के अंदर शौहर बीवी बच्चे मिलकर रहते हैं, सास बहू हैं, नंद भाभी हैं, दरानी जेठानी हैं, तो आपस में बाज़ औक़ात ऐसे मामलात हो जाते हैं कि गुस्सा आ जाता है, तो एक दूसरे के साथ दरगुजर से काम लेना है। आप क्लास फेलोज़ हैं और उसमें जो है लोग सही से रवैया अख्तियार नहीं करते, तो क्या करना है, सब्र से काम लेना है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक बार रात को मस्जिद में गए, एक शख्स सो रहा था अंधेरे में, आप जो है आपका पॉइंट उसके पाँव पे आ गया, उसको ठोकर लग गई। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो? बोले, नहीं। आपके साथ जो चपरासी था उसने चाहा कि उसको सजा दे। आपने कहा कि इसने मुझसे सिर्फ पूछा था कि क्या तुम पागल हो, और मैंने जवाब दे दिया कि नहीं, तो मारना नहीं है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को एक दफ़ा किसी ने सख्त कलमात कहे तो आप जवाब में खामोश रहे। लोगों ने कहा, आप चुप क्यों हैं? फरमाया कि तकवा ने ज़बान में लगाम दे रखी है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक रोज़ मस्जिद से निकले तो रास्ते में एक शख्स मिला, बेतहाशा बुरा भला कहने लगा। आपने फरमाया, मेरे जो हालात तुमसे पोशीदा हैं वो इससे बहुत ज़्यादा हैं, अगर तुम्हारी कोई ज़रूरत ऐसी है जिसे मैं पूरी कर सकता हूँ तो बताओ। फिर उसे अपना कुर्ता और 1,000 दिरहम नकद अता किए। वो शख्स इतना मुतासिर हुआ और बोल उठा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं। अब आप देख लें कि किस तरह से लोग जो थे जो दूसरों की गलतियों को माफ़ करते थे। गुस्सा आता है ना ऐसे मौक़ों पर, लेकिन वो माफ़ कर देते थे। दिल्ली में जो है एक बुज़ुर्ग थे बाकी बिल्ला, उनके पड़ोस में एक बड़ा ही बुरा शख्स रहता था, हर वक्त जो है वो गलत काम करता और आपके ख़िलाफ़ बकवास करता। और एक दफ़ा किसी ने जो है वो हाकम शहर से कहकर उसको गिरफ़्तार करवा दिया। हज़रत बाकी बिल्ला को पता चला तो कि उसको गिरफ़्तार करवाया गया है कि वो आपकी शान में बहुत ज़्यादा गुस्ताखी करता था, तो फरमाया कि मैं क्या और मेरी शान क्या, जो कुछ वो मुझे कहता था मैं इससे ज़्यादा गुनाहगार हूँ, और इस गिरफ़्तार करने वाले के बारे में क्या किया कि अब चाहा कि उसको जो है वो आज़ाद कर दिया जाए। और जिस शख्स ने गिरफ़्तार करवाया था ना, उसे कहा कि भाई तुम नेक आदमी हो, इसलिए तुम्हें दूसरे लोग बदअमाल नज़र आते हैं, मैं तो अपने से ज़्यादा बुरा किसी को नहीं देखता। और मैं ये चाहता हूं कि उसे जो है आजाद कर दिया जाए। तो फिर उसको आजाद करवा दिया, खुश नहीं हुए कि अच्छा है कि उसको तो जेल में डाला गया। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बूढ़ा शख्स, बीमार शख्स मेहमान बना, बहुत से अमराज का शिकार था, सख्त बदमिजाज। मसलसल कई रात आपने उसकी तीमारदारी की और जागते रहे। एक रात थोड़ी देर के लिए आपकी आंख लग गई तो ये एहसान फरामोश बूढ़ा आपको बुरा भला कहने लगा, आपको मुतकब्बिर, फरेबी, मकार, दीन फरोश और पता नहीं क्या क्या कह रहा था। किसी बात का जवाब ना दिया। बीवी को बहुत गुस्सा आया, मशवरा दिया कि इसको घर से निकाल दें। आप हंस पड़े और बीवी से कहा, ऐसे आदमी की बातों को सुनना चाहिए, बीमार है ना, बेचैनी की वजह से सो नहीं सक रहा, और जब तू अपने आप को खुशहाल और कवि देखे तो शुक्राने में बीमारों और कमज़ोरों का हक अदा कर, यानी फिर उनकी जो है वो मदद कर। तो ये है तीसरी सिफ्त कि वाइज़ा मा गदेबू हम यगफिरून, कि जब उनको गुस्सा आ जाता है तो दरगुजर करते हैं। आयत नंबर 38, चौथी सिफ्त, वल्लज़ी नस्तजाबू लिरब्बिहिम व अकामु सलाता, जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं। इसका क्या मानी है अल्लाह का हुक्म मानना? इसके ये मानी है कि अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहते हैं। अल्लाह जिस काम के लिए उन्हें बुलाता है उसके लिए दौड़ पड़ते हैं। अल्लाह जिस चीज की उन्हें दावत देता है तो उस दावत को कबूल कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये हैं अल्लाह की तरफ दौड़ने वाले और अल्लाह की अतात करने वाले। और आप भी अपना मुहासबा करें कि आपके अंदर कितनी इस्तजाबत पाई जाती है, कि अल्लाह का जो हुक्म मिलता है तो क्या आप बेचूनों चराग उसको कबूल करती हैं, उसको अमल के लिए तैयार हो जाती हैं, वो आपकी तबीयत के मुताबिक हो या मुखालिफ हो। तो हर हाल में इस्लाम के तमाम फ़राइज़ की अदायगी जो है उसका नाम है कि अल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अकामुस्सलाह, और वो नमाज को कायम करते हैं, उसके तमाम आदाब, शराइत, फ़राइज़, वाजिबात और उसकी रूह के साथ। सिफ्त नंबर 5, व अमरुहुम शूरा बैनहुम, और अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं। अब यहाँ पे जो है मशवरा भी अहले ईमान की बेहतरीन सिफ्त करार दिया गया। मुशावरत इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी का अहम सुतून है। बग़ैर मशवरे के अपने काम को चलाना ये जाहलियत का तरीक़ा है। तो मशवरा किसे कहते हैं, इसका रूट क्या है? शीन वो रा इसका मादा है। इसके जब मानी मैंने डिक्शनरी में देखे थे, मुझे बहुत ही मज़ा आया, बड़ा ही मैंने लुत्फ़ उठाया कि मशवरा मशवरा बचपन से हम कहते चले आए, लेकिन पता ही नहीं था कि दरअसल इसके मानी क्या हैं। शीन वो रा, छत्ते से शहद निकालना, छत्ते से शहद निकालना, घोड़े को दौड़ाकर मालूम करना कि वो कितना तेज दौड़ सकता है। अब आप देखें कि शहद के छत्ते में मुख्तलिफ फलों से और दरख्तों से और फूलों से शहद की मक्खियाँ जो रस निचोड़ कर लाती हैं तो डाल देती हैं। तो अब वो जो शहद होता है वो छत्ते से बहुत एहतियात से निकालना पड़ता है ना, क्योंकि मछली मक्खियाँ जो हैं उसकी हिफाजत करती हैं, कोई शहद निकालना चाहे तो वो लड़ने लगती हैं उनके ऊपर, उनको काटती हैं। तो छत्ते से शहद निकालना, तो जिस तरह वो मक्खियाँ शहद मुख्तलिफ रसों मुख्तलिफ फलों से जो निचोड़ कर लाती हैं और जमा कर लेती हैं, तो मुख्तलिफ जगह से जमा किया हुआ जो शहद है उसको आप ले लें, तो ये मशवरा है। तो मशवरा फिर किसे कहते हैं कि एक दूसरे की तरफ बात लौटा कर राय मालूम करना। तो जब आप एक दूसरे की तरफ बात को लौटाते हैं और राय मालूम करते हैं, फैसला करते हैं, तो ऐसे ही है जैसे कि मुख्तलिफ जगह से शहद को इकट्ठा करना। तो कोई भी ऐसा मामला जिसका ताल्लुक दो या दो से जायद लोगों के मफाद से हो तो उसका फैसला अब इनफरादी तौर पर करने की बजाय मिलकर करना चाहिए, और अगर आप इनफरादी तौर पर करेंगी तो ये गलत है। और ये मुशावरत जो है ये मियाँ बीवी के दरमियान भी होनी चाहिए, ये वालदैन और बच्चों के दरमियान होनी चाहिए, ये टीचर और स्टूडेंट के दरमियान होनी चाहिए और दोस्तों के दरमियान, एक जो जॉब करने वाला ऑफिसर है और उसके जो मातहत हैं उनके दरमियान, और एक मस्जिद है, एक इस्लामिक सेंटर है, एक इस्लामी जमात है, उसका एक अमीर है, उसका एक प्रेसिडेंट है और उसकी जो शूरा है, उसकी जो कमेटी है, उसके दरमियान भी होनी चाहिए। और इस सिलसिले में जो है वो हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, और आप सूरत आले इमरान में आप पढ़ चुकी हैं कि वह अमरुहुम, वहाँ पे आप पढ़ चुकी हैं कि वह शाविरहुम फिल अम्र, कि उनके आपस के मामलात जो हैं वो वहाँ मशवरे से तय होते हैं। सूरत आले इमरान आयत 159 में अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था कि क्योंकि गज़वा उहुद में सहाबा की जो गलती थी, बा सहाबा की गलती, तो उससे बहुत तकलीफ़ हुई मुसलमानों को, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसरदा थे, लेकिन जब गज़वा उहुद पर तबसरा किया अल्लाह ताला ने तो फिर भी कहा कि अपने सहाबा से मशवरा कर, वशाविरहुम फिल अम्र, तो जंगी मामलात में अहम कामों में मशवरा करना जो है ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तमाम ज़िंदगी के अहम मामलात में। हत्ता कि वो घर के कामों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से, अपने अज़वाज मोहतरा से मशवरा करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब नेज़े के वार से ज़ख्मी हो गए, ज़िंदगी कोई कोई उम्मीद बाकी ना रही, तो आपने अपने बाद में खलीफा मुकर्रर करने के लिए 6 आदमियों की एक कमेटी मुकर्रर की थी, जिसमें हज़रत उस्मान, हज़रत अली जो खुलफ़ाए राशिदीन में से थे, 2 तो ये लिए, और तलहा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद और अब्दुलरहमान बिन औफ, बाकी 4 ये लिए। 6 लोगों की एक कमेटी मुकर्रर की थी कि जो है वो इन में से जो है वो किसी एक को जो है वो खलीफा बनाया जाए, और लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत के लिए मुकर्रर किया था। तो अब क्या करना चाहिए कि मशवरा करना चाहिए। अच्छा, मशवरा हर एक से नहीं हो सकता हर चीज़ में। जैसे एक ब्रिज बनाना है तो आप इंजीनियर से मशवरा करते हैं, कोई बीमारी लाहक है तो आप डॉक्टर से मशवरा करते हैं, तो इसी तरह अगर कोई मसला है, कोई दीनी मामलात हैं, तो फिर एक स्कॉलर से, एक आलिम से, एक खुदा खौफी रखने वाले, एक समझदार बंदे से मशवरा करना चाहिए। तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में मशवरा करना चाहिए। मसलन घर में आपने वाइट वॉश करवानी है, तो घर में बच्चों के साथ, बीवी के साथ बैठकर कि हम, बीवी है तो शोहर के साथ, कि कौन सा कलर होना चाहिए, बच्चों से पूछ सकते हैं। मसलन खाना पकाना है तो आप पूछ सकते हैं कि बेटा मेन्यू बताएं, क्या एक बच्चा एक चीज़ कहता है, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि चलो बेटा आज इसका कहना, इसकी मर्ज़ी के मुताबिक पकाते हैं, कल भाईजान की और परसों आपकी की और फलां, तो इस तरह हर एक की खुशी की के मुताबिक। तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा फील करते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत अहम चीज़ें हैं और हमसे मशवरा लिया जाता है। कपड़े ख़रीदने हैं, आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो कौन से पार्क में जाएँ, कहाँ जाएँ, तो छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में मशवरा करना, तो इस तरह बच्चों को सोचने की आदत होती है और वो जो है वो समझदार हो जाते हैं। और ये क्या है, ये एक मोमिनाना सिफ्त है कि आप उनके आपस के मामलात वो मशवरे से तय होते हैं। फिर इसके बाद 6 सिफ्त है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, कि हमने जो कुछ भी उन्हें रिस्क दिया है इसमें से खर्च करते हैं। अब यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जो कुछ दिया है वो सब खर्च कर देते हैं। पहली चीज़ ये कही कि जो रिस्क हलाल हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं, यानी हराम माल नहीं, रिस्क हलाल। नंबर 2, वो माल को बचा बचा के नहीं रखते, खर्च करते हैं। नंबर 3, जो है वो उसमें से खर्च करते हैं, सारा नहीं खर्च करते, ये है। फिर उसके बाद 7वीं सिफ्त है, वल्लज़ीना इसा असाबहुमुल बग़्यु हुम यंतसिरून, और जब उन पर ज़्यादती की जाती है तो इसका मुकाबला करते हैं। अहले ईमान की बेहतरीन सिफ्त क्या है, अब आप देखें कि नरमी, दरगुजर, अफ़ो दरगुजर, इसका बार बार पढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अहले ईमान की सिर्फ ये सिफ़त नहीं है कि वो दूसरों के लिए, ज़ालिमों के लिए जो है वो नरम हो जाए, नरम चारा बन जाए, बल्कि वो उनके लिए लोहे का चना बन जाते हैं कि जालिम जब उसे चबाने की कोशिश करे तो अपना जबड़ा तोड़ ले, लेकिन वो ان کو نقصان نہ پہنچا سکے. تو شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ غالب ہوں تو مغلوب کے قصور معاف کر دیں, قادر ہوں تو بدلہ لینے سے درگزر کریں, اور کمزور سے کوئی غلطی ہو جائے تو چشم پوشی کریں, اور اگر کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے زیادتی کرنا چاہے تو ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور اس کے دانت کھٹے کر دیں. تو وہ ظالموں اور جباروں کے لیے جو ہے وہ نرم چارہ نہیں بنتے. یاد رکھیے گا کہ والذین اذا اصابہم, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب پہنچتی ہے ان کو البغیو, بغیو جو ہے یہ زیادتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کہ جب ان کو کوئی زیادتی جو ہے پہنچتی ہے, ہم ینتصرون, ویسے تو نون سوادرا نصرا ناصر مدد کرنے کے لیے آتا ہے نا, ینتصرون, جب ینتصرون آتا ہے تو یہ انتقام کے معنی دیتا ہے کہ وہ برابر کا انتقام لیتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات اگر ظالم کو چھٹی دے دی جائے, اس کو پکڑا نہ جائے, تو پھر وہ ظلم جو ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی ہے کہ جو ظالم ہے اس کو کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے, یعنی قصاص لینے کی اجازت ہے. برائی کا بدلہ اگرچہ برائی نہیں ہے, لیکن جب ضرورت محسوس ہو تو پھر اس کا جو ہے وہ بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ پھر جو ہے وہ ظلم کے مقابلے میں ڈرتے ہیں اور ظالم سے بدلہ لیتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا, آپ معاف کر دیتے تھے. آپ نے فتح مکہ کے دن خون کے پیاسوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. نمبر دو, حدیبیہ میں آپ نے 80 آدمیوں کو معاف کیا جنہوں نے آپ کے خلاف سازش کی تھی. نمبر تین, لبید بن عاصم یہودی سے بدلہ نہیں لیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا. آپ نے اس یہودیہ عورت کو بھی کچھ نہیں کہا جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا. تو ذاتی طور پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا, لیکن بعض ایسی چیزیں جہاں پہ یعنی اسلام کے لیے, جو اسلام کے لیے نقصان پہنچانے والے تھے, تو آپ نے ان سے جو ہے وہ انتقام لیا. شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں, دنیا کمانا ہنر نہیں ہے, اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ ہی کسی کا دل جیت لے. تو کسی کا دل کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ اس کو معاف کر کے, انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں معاف کر دینا, جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے معاف کیا تھا, جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاف کیا تھا. تو عفو درگزر میں غصے کو ضبط کرنا, معاف کرنا, بردباری, یہ سب چیزیں جو ہیں شامل ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وجزاء السیئۃ سیئۃ مثلہا, برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. یہ جو آیت ہے نا, جو پہلے آپ پڑھ چکی ہیں نا, معاف کرنا اور سارا کچھ, یہ اسی کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے. پہلا اصولی قاعدہ یہ بتایا گیا, وجزاء السیئۃ سیئۃ مثلہا, کہ بدلہ لینے میں جو ہے جائز حد یہ ہے کہ جتنی برائی کسی کے ساتھ کی گئی ہو اتنی ہی برائی وہ اس کے ساتھ کرے, اس سے زیادہ برائی کا وہ حق نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد دوسرا قاعدہ بتایا جا رہا ہے, فمن افا, پھر جو کوئی معاف کر دے, وہ اصلاح, اور اصلاح کرے, فاجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ کہ زیادتی کرنے والے سے بدلہ لے لینا اگرچہ جائز ہے, لیکن جہاں معاف کر دیا جائے تو اصلاح کی خاطر بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے. اور یہ معافی جو ہے انسان اپنے نفس پر جبر کر کے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے جو اپنے نفس پر صبر کیا ہے, جبر کیا ہے, تو اس کا اجر میرے ذمہ ہے. بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی خاطر تم نے جو کڑوا گھونٹ بھرا ہے, اس کا اجر تمہیں دنیا نہیں دے سکتی, وہ نہیں دے سکتے, فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, تو اس کا اجر میں دوں گا. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. پھر آپ دیکھیے کہ اب جو ہے اس تنبیہ میں, اب اگلا جو آیت نمبر 41 ہے, اس میں معاف کرنے کا تیسرا قاعدہ بتایا گیا ہے, یعنی جو بدلہ لینا ہے کیسے لینا ہے, وَلَا مَنْ اِنْتَصَرَ, اور جو لوگ انتقام لیں بعد از ظلم ہی ان پر ظلم ہونے کے بعد، کہ جو لوگ ظلم ہونے کے بعد انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، تو ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. یعنی اگر کوئی جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بدلہ لیتا ہے، وہ انتقام لیتا ہے، تو اس کو ملامت نہیں کی جا سکتی، اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. کیونکہ اگر کسی نے کسی کو مارا ہے تو برابر میں وہ بھی مار لیتا ہے، کسی نے کوئی بات کہی ہے وہ بھی کہہ دیتا ہے، تو اتنا تو لے سکتا ہے جتنا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس پہ نہیں کچھ بھی کہیں. انما السبیل، بے شک ملامت کی جا سکتی ہے، یہاں پہ السبیل کے معنی ملامت کے ہیں، بے شک ملامت کی جا سکتی ہے، اللذین، ان لوگوں پر، یظلمون الناس، جو لوگوں پر زیادتیاں کرتے ہیں، جو پتھر کا جواب اینٹ سے دیتے ہیں، جو تھپڑ مارے تو وہ آگے سے لات اور گھونسوں کی بارش کر دیتے ہیں، کوئی ان کی طرف گھور کو دیکھے تو آگے قتل کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ملامت کرنی چاہیے کہ جو بدلے میں حد سے بڑھتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. تو انما السبیل للذین یظلمون الناس، ملامت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق زیادتیاں کرتے ہیں زمین میں. اولئک لہم عذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر وغفر، البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کر لے، ان ذالک لمن عزم الامور، تو یہ بڑی اول العزمی کے کاموں میں سے ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو متوجہ کیا ہے کہ گو کے معاف کرنے کی، گو کے بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اتنا ہی لینا جتنی کہ زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے. اگر معاف کر دو اور اصلاح کرو گے تو اس کا بڑا اجر ہے، اور جب بدلہ لینے لگو تو حد سے نہ بڑھنا، اور اگر بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاؤ گے تو پھر اللہ کے ہاں سخت سزا ہے. لیکن آخری بات دوبارہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کر کے پیش کیا ہے وہ کیا، آیت نمبر 43، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے، تو یہ بڑی اول العزمی کے کاموں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو ہے ایک طرف بدلہ لینے کی اجازت دی، دوسری طرف عفو و درگزر کی رغبت دلائی، تیسری طرف عفو و درگزر میں جو ہے کہا کہ اس کا اجر میں دوں گا، چوتھی طرف کہا کہ انتقام لینے کی اجازت ہے لیکن عدل کے ساتھ، لیکن آخری بات پھر بھی یہی کہی کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے. تو اس سلسلے میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ مومنانہ صفات کیسے پیدا ہوں. یہ ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ پر اور آخرت پر اتنی اچھی یہ صفات ہوتی چلی جاتی ہیں. نمبر دو، غصے پر سب سے پہلے قابو پایا جائے. نمبر تین، سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں انسانوں کی طرف سے تکلیفوں، آنے والی تکلیفوں پر صبر کریں. نمبر چار، صبر سے بھی آگے کا مقام یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ دوسروں کو خوش دلی سے معاف کرے، باوجود اس کے کہ وہ انتقام لینے کی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ، مشکات، ترمذی کی روایت ہے، وہ جو لوگوں سے ملا جلا رہے اور ان کی اعزاؤں پر صبر کرے، اس سے بہتر ہے جو ملنا جلنا چھوڑ دے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرے. اب آپ دیکھیے کہ صفات کے بعد جو ہے یہ سورۃ الشورى کی آخری آیات ہیں، اور جو شروع کا مضمون ہے اس میں سے اہم باتیں سامنے رکھی گئی ہیں. پہلی بات، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِ، جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے. یعنی قرآن کے نازل ہونے کے بعد، رسول کی رہنمائی کے بعد، اگر کوئی شخص اللہ کی ہدایت کی طرف نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے منہ پھیر لیتا ہے. چونکہ وہ گمراہی سے نکلنا نہیں چاہتا تو اللہ بھی پھر انہیں ہدایت نہیں دینا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آنا نہیں چاہتا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی گمراہ کرنے کا فیصلہ کیا. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر اس شخص کا دنیا میں کوئی چارہ ساز نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ, تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب کو دیکھیں گے, یَقُولُونَ کہیں گے, هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيل, کہ کیا اب پلٹنے بھی کی بھی کوئی سبیل ہے, کیا کوئی پلٹنے کا موقع ہے, کیا ہم دنیا میں جا سکتے ہیں کہ ہم پھر دوبارہ نیک عمل کر سکیں, اچھے عمل کر سکیں. وَتَرَاهُمْ يُورَدُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ, اور تم دیکھو گے, يُورَدُونَ عَلَيْهَا, یہ پیش کیے جاتے ہیں جہنم پر, یہ جہنم کے جب سامنے لائے جائیں گے, خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ, اور یہ ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے. یہاں پہ جو ہے وہ خَاشِعِينَ کا جو لفظ آیا ہے یہ جھکنے کے لیے ہے, اور زال لام لام ذل جو ہے زور اور قوت کے آگے دب جانا, تو یہ ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے. نمبر 3, ینظرون من طرف خفی, اور اس کو نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہولناک منظر ہوتا ہے تو انسان جو ہے ڈر کے مارے آنکھیں بند کرتا ہے, اس سے رہا نہیں جاتا, تو کن اکھیوں سے کبھی دیکھتا ہے کبھی آنکھوں کو بند کرتا ہے, ڈر کے مارے جو ہے ادھر ادھر ہوتا ہے. تو یہاں پہ جہنم کی طرف جانے والوں کی اسی کیفیت کی منظر کشی کی گئی ہے. ینظرونا, وہ دیکھ رہے ہوں گے, من طرفن, آنکھ کے کنارے سے, خفین, پوشیدہ طور پر چھپ کر, نظروں کو بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے. وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ, اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائیں گے, وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ کہیں گے, وہ اقرار کریں گے کہ بے شک خسارے میں جانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا. تو وہ کہیں گے کہ آج قیامت کے دن خسارے میں جانے والے کون لوگ ہیں, جو خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ گمراہی میں ڈالے رہے. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم, الا ان الظالمین فی عذاب مقیم, خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قیامت کے دن کی, حشر کے میدان کی, اور پھر جزا اور سزا کی, یہاں پہ خاص طور پر سزا کا ذکر ہے, اس کی منظر کشی کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ سوچ لو اور اپنی اصلاح کر لو قبل اس کے کہ تم پر جو ہے یہ دن آ جائیں. خبردار یہ ظلم کرنے والے, یہ نافرمانی کرنے والے مستقل عذاب میں ہوں گے. وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ, اور وہاں ان کے کوئی حامی اور مددگار نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آ سکیں. وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيل, اور جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے پھر اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. اللہ ایسے کسی پر زیادتی نہیں کرتا, بلکہ جو خود صراط مستقیم کی طرف آنا نہیں چاہتا تو اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کو زبردستی جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ چلائے. استجیبوا لربکم, مان لو اپنے رب کی بات, من قبل ان یاتی یومن, قبل اس کے کہ وہ دن تم پر آ جائے, لا مرد له من اللہ, جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے, نہ اللہ خود اس کو ٹالے گا اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ ٹال سکے. ما لکم من ملجئ یومئذ وما لکم من نکیر, فرمایا اب آپ دیکھیں کہ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. تو یہاں پہ ملجا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, ملجا, اور اس کا روٹ ہے لام جیم حمزہ, اور یہ پناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرمایا ما لکم من ملجئ, نہیں ہے کوئی جائے پناہ, یوم اس دن, قیامت کے دن, تو قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی, کیونکہ مشکل وقت میں کوئی جگہ ہو تو انسان وہاں جا کے چھپ جائے نا, ایسا نہیں ہوگا. وما لکم من نکیر, और ना कोई तुम्हारे हाल को बदलने की कोशिश करने वाला होगा। नकीर जो है नून काफ रा, बुनियादी तौर पर दो बातें इसके अंदर होती हैं, एक अजनबियत और दूसरा नागवारी। इसी तरह फिर किसी चीज़ को बिगाड़ देना, उसकी शक्ल बदल देना, नामाकूल चीज़ को कहते हैं। मुनकर नकीर भी इस्तेमाल होता है, इसी से अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। तो मा लकुम मिन नकीर, और कोई तुम्हारे हाल को बदलने की कोशिश करने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा कि तुम्हें मुश्किल से निकाल दे। फ़ाइन आरदू, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये मुंह मोड़ते हैं, अगर ये हदायत को कबूल नहीं करते, फ़मा अरसलना का अलैहिम हफीज़ा, तो हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर तो नहीं भेजा। आपका काम था पहुंचा देना, बस आपने पहुंचा दिया, अब आप परेशान ना हो। इन अलैका इल्लल बलाग, आप पर तो सिर्फ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। व इन्ना इज़ा अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन फरेहा बिहा। अब यहाँ पे इंसान के छछोरेपन को ज़ाहिर किया गया है कि इंसान का हाल ये है कि जब हम उसे अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं, फरेहा बिहा, तो वह इस पर खुश होता है, फूल जाता है। वाइन तो सिबुम सैयातुन, और जब उस पर कोई जो है वो बुरा वक्त आता है, जब उसको पहुंचती है कोई बुराई, बिमा कद्दमत अईदीहिम, इसके अपने हाथों, जो कुछ इसके हाथों ने आगे भेजा, फ़इन्नल इंसान कफूर, तो इंसान उस वक्त सख्त नशुकरा हो जाता है। अल्लाह के सारे एहसानात को भूल कर फिर नशुकरी की बातें करता है, किस्मत को रोता है, नेमतों को भूलता है, शिकवे शिकायतें करता है, ऐसे जैसे उसको कभी खुशहाली मिली ही नहीं थी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान को मुसीबतों पे सब्र करना चाहिए और मुश्किलों पे शुक्र करना चाहिए। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। यखलुकु मा यशा, वो जो चाहे पैदा करता है। यहाबू, इसका रूट है वोहाबा, वो अता करता है, देता है। लिमन यशा, जिसको वो चाहता है। अब आप देखें कि एक तरफ अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया कि आसमानों ज़मीन का बादशाह तो अल्लाह है, और यहाँ पे अल्लाह ताला ने, अल्लाह जो अता करता है, तो अल्लाह ताला ने अता करने के चार अंदाज बताए हैं। नंबर एक, यहबू लिमन यशाउ इनासन, कि जिसे चाहता है बेटियां देता है। इनासन, इनास जो है ये मुअन्नस से है, उनसा वाहिद है, इनास जमा है, जिसको चाहता है सिर्फ बेटियां देता है। व यहबू लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहता है वो लड़के देता है। ज़कर उन वाहिद है और ज़ुकूर जमा है। कितने लोग हैं जिनका दिल चाहता है बेटा हो, लेकिन अल्लाह देता ही नहीं। मेरी एक स्टूडेंट थी, 7 बेटियां 8 बेटियां, अल्लाह ने कोई बेटा, कोई उनको जो है वो भाई नहीं दिया। फिर इसके बाद आयत नंबर 50 में तीसरी इसकी शक्ल है, और युजव्वे जो हम जुकरानों व इनासा, फरमाया और युजव्वे जो हम, जोड़ा देना, मिला जुला कर देना, और युजव्वे जो हम, या उनको देता है मिला जुला कर, जोड़ा करके, जुकरानन बेटे व इनासन, और बेटियां। अब तीसरी ये शक्ल है, वो जिसको चाहता है बेटियां और बेटे मिला जुला कर देता है। नंबर 4, व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है, कुछ भी नहीं देता। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। सालों इलाज करा लिया लेकिन अल्लाह ने औलाद ही ना दी। तो क्या है, यखलुकु मा यशा, और शुरू में जो तारुफ करवाया, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आखिरी बात क्या है, इन्नहु अलीमुन कदीर, वो सब कुछ जानता और हर चीज़ पर कादिर है। वो बेशक वो बड़ा जानने वाला और वो बड़ी कुदरत रखने वाला है। तो इससे ये बात पता चलती है कि इन आयात ने बच्चों की जो इकसाम बयान की गई हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अल्लाह का हक है, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे, जिसको चाहे बेटियां बेटे मिला कर दे, और जिसको चाहे सिर्फ बेटियां ही दे दे, जो चाहे वो करे। और जो है वो, अगर आप इस इन आयात को पढ़ें तो आप देखेंगी कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने बेटियों का ज़िक्र किया है, और मुफस्सरीन कहते हैं कि बेटियों का ज़िक्र पहले है और बेटों का ज़िक्र जो है वो बाद में है, और हजरत वासिला बिन असका रजी अल्लाह सहाबी थे, वो कहते हैं जिस औरत के पेट से पहले लड़की पैदा हो तो वो मुबारक है, कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी बेटी का जिक्र जो है वो पहले किया और अल्लाह ही बेहतर जानता है। आयत नंबर 51 जो है इसमें वही की तीन किस्में बताई गई हैं। वमा काना ले बशरिन, किसी बशर का ये मकाम नहीं है, अय्युकल्ले माहुल्लाहु, कि अल्लाह उससे कलाम करे, अल्लाह उससे रूबरू बात करे, मगर इल्ला वाहियन, मगर वही के तौर पर। और वाहियन वही जो है इसके मानी होते हैं इशारतुन सरियतुन फी खफी खुफिया, यानी तेजी के साथ पोशीदा इशारा करना। तो वही की पहली किस्म जो हमारे सामने आ रही है वो क्या है, कि अल्लाह ताला जो है किसी पर वही करे, यानी उसके दिल में कोई बात डाल दे। नंबर दो, ओ मिम वरा ई हिजाब, या हिजाब के पीछे से, हिजाब के परे से, तो वराई पीछे से, हिजाब इन हिजाब के यानी पर्दे के पीछे से, ये वही की दूसरी किस्म है। जैसे मेराज के दौरान जब नमाजें फर्ज हुई तो ये पर्दे के पीछे से थी। और युरसिला रसूलन, या फिर वो कोई फरिश्ता भेजे, यहाँ पे रसूलन फरिश्ते के लिए आया है, फयू ही या बेइज्नही मा यशा, और वो उसके हुक्म से जो कुछ वो चाहता है वही करता है, इन्नहू अलीयुन हकीम, और वो बरतर और हकीम है। अब आप देखें कि फरिश्ता जो है जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम, कुरान सारा इसी सूरत में रसूल अल्लाह पर नाजिल हुआ, और ये आपके लिए बड़ी तकलीफ दे सूरत थी, पहले घंटियां बजने की सी आवाज आती और फिर जो है आप पर कुरान नाजिल होता। और आप देखें कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कभी आम इंसान की शक्ल में भी आए, जैसे हदीसे जिब्रील में हमें मिलता है कि आप आम इंसान की शक्ल में आए, फिर कभी असली शक्ल में भी आप आए, जैसे दो दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में देखा, और नंबर तीन कभी दहिया कल्बी की शक्ल में आते, ये सहाबी थे बहुत ही खूबसूरत थे और इनकी शक्ल में आते। तो वही की तीन किस्में सामने आई। नंबर एक, इल्का या इल्हाम के जरिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि पहले जो वही रसूल अल्लाह पर हुई वो सच्चा ख्वाब था, जो कुछ आप नींद की हालत में देखते वो बेदारी में सुबह की रोशनी की तरह जाहिर होता। जैसे आपका ख्वाब कि आप काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, सूरत फतह आयत 27, सुलह हुदैबिया से पहले। तो ये था जो अल्लाह ने आपके दिल में डाला था। नंबर दो, पर्दे के पीछे से, जैसे वाकया मेराज। नंबर तीन, रसूलन फरिश्ते के ज़रिए से, और आम तौर पर वही जो है यानी कुरान सारा इसी शक्ल में नाजिल हुआ, और जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने तीन तरह से आए, जैसे आम इंसान की शक्ल में, नंबर दो कभी असली शक्ल में, नंबर तीन कभी दहिया कल्बी की शक्ल में। इन्नहु अलीयुन हकीम, और वो उसके हुक्म से जो कुछ वो चाहता है वो ही करता है, वो वही करता है, और वो बरतर और हकीम है। यानी अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो किसी से रू दर रू कलाम करे, या फिर ये कि कोई और तदबीर इख्तियार कर ले। वकज़ालिका ओहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना, और इसी तरह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने हुक्म से एक रूह तुम्हारी तरफ वही की है। माँ कुंता तदरी मल किताबू, तुम्हें कुछ पता ना था कि किताब क्या होती है, वलल ईमानु, और ईमान क्या होता है, वलकिन जअलनाहु नूरन, मगर हमने उसको एक नूर बना दिया, एक रोशनी बना दी, नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना, और जिससे हम राह दिखाते हैं अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि जो ये वही है, ये मैंने वही के ज़रिए आपको रसूल बनाया और आपको कुरान दिया, और इससे पहले जो है आपको कुछ भी नहीं पता था कि कुरान क्या है, ईमान क्या है, वही क्या है, तो बस ये मेरा इंतखाब था कि मैंने आपको इसके लिए चुन लिया, और ये अल्लाह की मर्जी है कि वो जिसको चाहे जो है वो मुंतखब कर ले। तो मगर उस रूह को हमने एक रोशनी बना दिया जिससे हम राह दिखाते हैं और अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं। व इन्नका लतहदी इला सिराति मुस्तकीम, یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اب یہاں پر جو ہے ایک طرف جو اہل مکہ کہتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں رسول بنایا جاتا, اس پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے, جس کو چاہے وہی کے لیے منتخب کر لے. دوسری طرف اہل مکہ کہتے تھے کہ آپ کہیں سے سن سنا کر آ جاتے ہیں, گھڑ لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے. تیسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ولکن جعلناہ نوراً, تو آیت نمبر 52 میں نور جو ہے یہ قرآن, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نور کسے کہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے روح کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور نور کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. کیونکہ ایک طرف جو ہے وہی جو ہے وہ کیا ہے کہ روحم من امرنا, کہ اے محمد ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وہی کی ہے, اور روح سے مراد وہی اور وہ تعلیم ہے جو وہی کے ذریعے رسول اللہ کو دی گئی, اور جو ابھی میں نے ہم نے وہی کی قسمیں بھی پڑھی. اور دوسری طرف نور کیا ہے, جو ہدایت اللہ نے دی, جو ایمان کی روشنی دی, اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اہل مکہ کی باتوں کی پرواہ نہ کریں, یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو. اور سورۃ الشورا کی آخری آیت, صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور, یہ پوری سورت کا نچوڑ ہے. اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے, خبردار رہو, سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو عمل کا اصول کیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اور پھر آخری فیصلہ جو ہے وہ اللہ ہی کو کرنا ہے, اور اللہ ہی کچھ لوگوں کو جزا دے گا اور کچھ کو سزا دے گا. تو پیاری بہنوں, یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اللہ رب العزت ہمیں مومنانہ اوصاف کو اپنانے والا بنائے. تو پہلا عمل کا اصول کیا ہے کہ دنیا کی حقیقت جو ہے اس کو سمجھنا ہے کہ واقعی دنیا تھوڑی ہے اور عارضی ہے. نمبر 2, جو اللہ کے پاس ہے بہت اچھا ہے. نمبر 3, پھر اپنے ایمان کو زندہ اور تازہ کریں. نمبر 4, وہ مومنانہ اوصاف اپنائیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور آخری بات جو عمل کے لیے ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس سورت کی آخری آیت ہے کہ اس راہ کی طرف ہمیں چلنا چاہیے جو کہ اللہ کی بتائی ہوئی راہ ہے, اور وہ اللہ جو کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. یاد رکھیں کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ جانا ہے. تو چلنا ہے صراط مستقیم پر, وہ بتایا ہے اللہ رب العزت کا, اور یہ ایک واحد نجات کی راہ ہے کہ جس پر چل کر ہمیں رب کی رضا حاصل ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے, اور ہم سے وہ کام کروا لے کہ جو ہمیں جو ہے وہ جنت میں لے جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.